अब एक और इनकी आदत देखिएगा, वकालु हाजिया नामु व हरसुन हिजरुन, कहते हैं ये जानवर और ये खेत महफूज हैं, इन्हें सिर्फ वही लोग खा सकते हैं जिन्हें हम खिलाना चाहें, हालांकि ये पाबंदी इनकी खुद साख्ता है। कुछ जानवरों का गोश्त खुद खाते थे, कुछ का नहीं, कुछ का मर्द खाते, कुछ को औरतें खाती, अपनी मर्जी से हलाल और हराम के तरीके अख्तियार किए हुए थे। फिर कुछ जानवर है जिन पर सवारी और बोझ उठाना हराम कर दिया गया, और कुछ जानवर है जिन पर ये अल्लाह का नाम नहीं लेते। ये सब कुछ उन्होंने अल्लाह पर इफ्तरा के लिए किया, अनकरीब अल्लाह इनको इस झूठ बांधने का बदला देगा। यानी अपनी मर्जी से दीन का सेल्फ मेड वर्जन बनाने वाले क्या सोच रहे होते थे, कहते थे कि बस हम जो मर्जी चाहे करें। आज हमारे मुल्कों में भी ऐसी कुछ चीजें हैं, बहुत सारी हैं, कभी जाके लोगों के अंदर बैठ के देखिएगा, अपनी मर्जी का कुछ उन्होंने खुद से बनाकर बैठा हुआ। मुझे किसी एक सिस्टर ने बताया, बहुत ही करीब के जराए से, यानी ऑथेंटिक बात है, किसी एक बुजुर्ग से बहुत मुतासिर थे। फिर वो बुजुर्ग जब उनके घर में आते थे रहने के लिए, तो वो फजर से पहले सुबह उठ के बिल्कुल तहारत वाला गुसल करती, साफ सुथरे कपड़े पहनती, नए बर्तन खोलती, फिर उसमें करेले पकाती, और फिर उसमें जो कुछ उनको दही बड़े या क्या पसंद थे तो अपने उन बुजुर्ग को खाना पेश करते थे। और ये उनका मिथ था, मिथ समझते हैं, ख्याल था उनका, गुमान क्या था कि अगर हमने अपने इस बुजुर्ग को इस प्रोटोकॉल के साथ ये खाना ना खिलाया तो हम पे को बहुत बड़ी आफत आएगी। अब आप देखिए कि आपने अपने ऊपर फर्ज कर लिया गुसल, ना कर सकेंगे तो क्या होगा, कहा नहीं। फिर और भी बहुत सारी कहानियां उसमें थी। याद रखिए, दीन को सिंपल रखें, इजी गोइंग, यूजर फ्रेंडली। ये दीन बहुत खूबसूरत है, लेकिन हम बाज दफा शख्सियत परस्ती में बाज लोगों को इतना नेक समझ लेते हैं कि बस एक दफा उनके हाथ को हार्ट टच हो गया तो हम जन्नत में पहुंच जाएंगे, इनका पल्लू पकड़ ले ये पहुंच जाएंगे, आपको तो ये नहीं पता उन्होंने पहुंचना कि नहीं पहुंचना। तो ये चीजें हर दौर में हुई, ये कब हुई, जब आपने दीन का एक ऐसा मियार कायम किया जिसपे मैं नहीं पहुंच सकती, तो फिर मैं कहूंगी जो दो चार वहां पहुंचे हुए ना, मैं उन तक ही पहुंच जाऊं। वो कहते हैं ना, हमारी इनके आगे, इनकी अल्लाह के आगे। क्यों? क्योंकि हम उस मेयार पे पहुंच नहीं सकते। ये सब बातें उस दौर में आम थी। एक और बड़ी ही मायूब हरकत देखिएगा उनकी, और कहते हैं जो कुछ इन जानवरों के पेट में है, यानी बच्चे, ये हमारे मर्दों के लिए मखसूस है और हमारी औरतों पर हराम, लेकिन अगर वो मुर्दा हो तो दोनों इसके खाने में शरीक हो सकते हैं। बकरी के पेट में बच्चा है, बकरी को जिबा करेंगे, कहा अगर बकरी को जिबा किया तो जिंदा बच्चा निकल आया तो सिर्फ मर्द खाएंगे, और अगर जिबा किया और अंदर से एक मुर्दा बच्चा निकल आया तो औरतों तुम खा लो। ये है जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। ये बातें सुनकर कितना अजीब लग रहा है। क्या आपको लगता है कि अल्लाह का दीन इस किस्म की बातें कहता होगा? हरगिज नहीं। फरमाया, ये बातें जो उन्होंने घड़ ली हैं इसका बदला इन्हें अल्लाह देकर रहेगा, यकीनन वो हकीम है और सब बातों की उसे खबर है। यकीनन खसारे में पड़ गए वो लोग जिन्होंने अपनी औलाद को जहालत और नादानी की बिना पर कत्ल किया और अल्लाह के दिए हुए रिस्क को अल्लाह पर इफ्तरा पर तर्ज़ी करके हराम ठहराया। यकीनन वो भटक गए और हरगिज हरगिज राह रास पाने वालों में से ना थे। यानी इस तरह से इंसान की मत मारी जाती है कि वो ऐसी चीज़ों को करता है और उसको एहसास भी नहीं होता कि ये क्या चीज़ है। अल्लाह ताला ऐसी तमाम बेकार चीज़ों से हम सबको भी बचाए। अब आगे से सूरत का ततिमा है, एंड शुरू हो रहा है पूरी सूरत में। अगर आप पीछे से देखें, पिछले पारे से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं ना, तो उस दौर के बिगड़े हुए लोग, उनकी मनपसंद चीज़ें, इस किताब और अल्लाह के हस्ती के बारे में अपने मनपसंद गुमान। अब यहाँ बहुत खूबसूरत तरीके से कायनात में फैली हुई अल्लाह ताला की निशानियाँ, उसने आपके मेरे लिए क्या कुछ रखा हुआ है, उसका तस्करा करते करते बीच में उनकी कुछ बुरी आदतों का तस्करा किया जाएगा, जिससे कहना मकसूद ये है कि जो अल्लाह के दिए हुए दीन पर राजी नहीं है उसको कभी भी खुशी नहीं हो सकती। आइए पढ़ते हैं, और मैं आप सबको भी दावत दूंगी इन आयतों को पढ़ते हुए अल्लाह की मोहब्बत महसूस करें, उसने मेरे आपके लिए क्या कुछ किया। वहुवल्लज़ी अंशा जन्नातिम मारूशातिम व गैर मारूशात, वो अल्लाह ही है जिसने तरह तरह के बाग और ताकिस्तान और नखलस्तान पैदा किए, खेतियां उगाई जिनसे किस्म किस्म की खाने की चीजें हासिल होती हैं, जैतून और अनार के दरख्त पैदा किए जिनके फल सूरत में मिलते जुलते भी हैं और मजे में मुख्तलिफ हैं। आप देखिए कि ऑलिव और अंगूर, ग्रेप देखने में एक लगते हैं ना, लेकिन जायका कितना फर्क है। का खाओ पियो, खाओ इनकी पैदावार जबकि ये फैले, कुलु मिन समरी ही जासमरा, और अल्लाह का हक अदा करो जब इनकी फसल काटो, और हद से ना गुजरो कि अल्लाह हद से गुजरने वालों को पसंद नहीं करता। यहाँ देखिए खानों पीनों की बात है, खाइए, खाना भी मना नहीं है। कुलू क्या है, आप में से जिनको थोड़ी सी अरबी ग्रामर आती है, अमर है, सीख है, अमर है, इंटेरोगेटिव है, हुक्म है, तो अल्लाह के हुक्म पे अमल करते हुए खाइए, कोई बुरी बात है? लेकिन करना क्या नहीं है, कुलू इजासमरा, लेकिन ला तुसरिफू, इसराफ नहीं करना। इसराफ क्या होता है जी? आधा खाना आधा फेंकना, सब्जी काटी आधा छिलका ट्रैश में, ये इसराफ है। जरूरत से ज्यादा खरीदना, फिर जरूरत से ज्यादा पकाना, और फिर आधे से ज्यादा फेंकना, ये इसराफ है, इसको मानना पड़ेगा। आप किसी को कोई चीज दे गिफ्ट में, और बाद में आप देखें वो उसकी नाकदरी कर रहे हैं, आपको अच्छा लगेगा? आप पसंद नहीं करेंगे ना? अल्लाह ताला तो मेरी आपकी हर चीज पे नजर रखता है, तो कभी भी इसराफ ना करें। जितना खाना खाएं, इतना ना खाएं कि आपको उठाना ही पड़े, लेकिन जाया ना करें। दो चीजें होती हैं सूरत बनी इसराइल में, उसका फर्क भी पता चलेगा, एक है तबजीर और एक है इसराफ। बस इसराफ कह लीजिए कि अल्लाह की नाफरमानी के साथ लेना, या उसको इस्तेमाल करके अल्लाह की नाफरमानी करना। कहीं खाना जायज है लेकिन हद से ज्यादा खाना, कहीं नाजायज चीज का एक लुकमा तोड़ना, वो भी इसराफ बन जाता है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला में नेमतों की कदर की तौफीक अता फरमाए। फिर वही है जिसने मवेशियों में से वो जानवर भी पैदा किए जिनसे सवारी और बारबरदारी का काम लिया जाता है, और वो भी जो खाने और बिछाने के काम आते हैं। ये जो खाल होती है ना लेदर, उसकी तरफ इशारा है। कभी आपने वो रग्स देखे जो जानवरों के प्योर खाल के बने होते हैं, वाइट कलर के? यकीन करें हाथ में हाथ लगाए ऐसे लगता है रेशम की गोलियां। ये जो शीप फिर रही होती है ना, गोट या शीप, उसकी खाल इंतहा से ज्यादा नरम होती है। उसी का जिक्र है कि तुम गालीचे बना लेते हो, जमीन पे बिछाते हो, अल्लाह ने तुम्हारे लिए कितना कुछ रखा। खाओ इन चीजों में से जो अल्लाह ने तुम्हें बख्शी है, और शैतान की पैरवी ना करो, इसको हाईलाइट करें। खाओ पियो पहनो ओढ़ो घर बनाओ इस्तेमाल करो, गाड़ी लो सेलफोन लो, लेकिन इसराफ नहीं करना और शैतान की पैरवी नहीं करनी, यानी उन चीजों को इस्तेमाल करके शैतानी काम ना करो, क्योंकि वो तुम्हारा खुला दुश्मन है। ये 8 नर और मादा हैं, 2 भेड़ की किस्म से और 2 बकरी की किस्म से। ए नबी, इनसे पूछो कि अल्लाह ने इनके नर हराम किए या मादा, या वो बच्चे जो भेड़ों और बकरियों के बेटों में हो, ठीक ठीक इल्म के साथ मुझे बताओ अगर तुम सच्चे हो। इसको हाईलाइट करें, ये है हमारे दीन का हुसन। ज़ुख़रुफ़ल कौली गुरूरा का तोड़ क्या है, दलील। आपने अभी इसको नहीं समझा, बस मेरे कहने पर हाईलाइट कर लिया करें, फिर इंशाल्लाह दोबारा पढ़ेंगे तो समझ आएगा। हमारा दीन इल्म और दलील का दीन है। आज दुनिया में आप देखिए, आप कोई इतनी सी डिबिया भी खरीदते हैं ना, उस पर इंग्रेडिएंट्स लिखे होते हैं, सील होती है। वेस्ट में तो बेच ही नहीं सकते आप चीज, बारकोड के साथ चीजें बिकती है ना। एक चॉकलेट आप खरीदते हैं, कैंडी खरीदते हैं, कुकीज का डिब्बा खरीदते हैं, उस पर इंग्रेडिएंट्स, उसका रेशियो, उसका प्रोपोर्शन लिखा होता है, एलर्जी के इंग्रेडिएंट्स लिखे होते हैं। यही कहा जा रहा है, दीन के नाम पर जब कभी कुछ भी करो, एक दफा आकर देख लो कि क्या अल्लाह और उसके रसूल ने यह बात कही है कि नहीं कही। बस इतना सा तुमसे मुतालबा है, क्योंकि आप और मैं अपनी मर्जी से तो कोई बात नहीं कह सकते। इस मुल्क का कानून है कि आप और मैं अपनी मर्जी से किसी को उससे मुख्तलिफ बात बता सकते हैं। बस तो रेफरेंस को रखो। आज क्या होता है, आप मेरी इस बात के बाद घर जाकर जब थोड़ा सा फारिग हो, मैं नहीं कहती कि वक्त जाया करें, आप अपने मैसेजेस चेक कीजिएगा, मोस्टली आजकल व्हाट्सएप पे ही आते हैं। अगर आपको 10 मैसेजेस आए हैं आज के ही दौर में चले रमजान के मुतालिक, उन 10 स्लाइड्स में से 8 के नीचे कोई रेफरेंस नहीं होगा। हदीस कही जाएगी, कुछ नहीं नाम, अल्लाह के नबी ने फरमाया, क्या फरमाया कुछ नहीं पता। पहला जुमा इस दफा, वो एक मैसेज 2-3 दिन पहले कितने लोगों ने भेजा, इस दफा 5 जुमे हैं, पहला जुमा है, आखिरी भी जुमा है, और 5 जुमे जिस साल आ जाए उसमें ये बरकतें, और इसको जल्दी से आगे फैला दो, अगर तुम्हें कसम देता हूं तुमने इसको आगे बंद किया। भाई क्यों, आप क्यों मेरे सर पे सवार है? अभी कल मुझे कोई बता रहा था कि उनको कोई मैसेज किसी ने भेजा कि मैंने नियत की है इस रमजान में कि मैंने 5 करोड़ दफा नबी सल्लम को दुरूद शरीफ भेजना है, तो मैंने पढ़ लिया, अब आपको भेजे, आप दुरूद शरीफ पढ़ के आगे को भेजे, इस सिलसिले को आप रोके नहीं, वरना मैं कल क़यामत के दिन आपको पूछूंगी कि आपने मेरा दुरूदों का ये सिलसिला क्यों तोड़ा। हाथ साफ कीजिए, दुरूद पढ़िए, आप सारे पढ़े दुरूद, आप देखिए 1 घंटे में कई लाख दफा दुरूद पढ़ के हम जन्नत में जाते हैं, क्या जरूरत है 30 दिन आके इस कुरान को पढ़ने की। अकल अकल। आप देखिए, दुनिया का एक छोटा सा मुल्क भी ऐसी बातों पे नहीं चलता। कभी पुलिस आपको पकड़े के सीट बेल्ट क्यों बांधी है, तो आप उसको जाके फ्रेंच लॉ की कुछ शिकें पढ़ के सुनानी शुरू कर दे। अच्छा, मैं फ्रेंच लॉ को आगे से आगे पास करती रहूंगी, आप मुझे ये टिकट ना दें। बेवकूफी है। ये बातों पे हम मुसलमान फिर बेवकूफ बनते हैं, इसलिए लोग हमें पागल कहते हैं, दीवाने। जब हम दीन पे भी अमल करते हैं तो इतनी बेतुके तरीके से करते हैं, तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि लाओ फिर दलील दिखाओ। आज से अपने लिए एक नियत करें। आपको भी तरीका सिखाती हूँ जो मैं कभी कभी करती हूँ। मैं अव्वल तो ऐसे मैसेजेस मुझे आते भी कम है, लेकिन काटती हूँ। मैं एक दो लफ्ज़ लिखे, मैं रेफरेंस प्लीज। कोई ऐसी स्लाइड आ भी जाए ना, तो मैं कहती हूँ रेफरेंस प्लीज। आज तक जवाब नहीं आया कि इसका मुझे हवाला तो दीजिए। मैं भी करूँ, पर मेरे नबी ने कहा तो मैं करूँ, मेरे अल्लाह ने कहा तो मैं करूँ, मैं किसी और के कहने पे ये बात क्यों करूँ? लेकिन चूंकि इल्म नहीं है, अल्लाह ताला कहते हैं इल्म के बगैर काम करने वाले ऐसे ही हैं। और इसी तरह दो ऊंट की किस्म से और दो गाय की किस्म से पूछो इनके नर अल्लाह ने हराम किए या मादा, या वो बच्चे जो ऊंटनी और गाय के पेट में हो, क्या तुम उस वक्त हाजिर थे जब अल्लाह ने इनके हराम होने का हुक्म तुम्हें दिया था? ये भी मैन मेड बातें, ये हलाल वो हराम। आज अब देखिए, कुछ लोग मुझे बता रहे थे कि बाज एक ऐसे खाने होते हैं कि कुछ लोग कहते हैं कि वो हमारी औरतें खा सकती हैं, मर्द नहीं। मैंने कहा वो कौन से? कहने लगी रजब के महीने में कुंडों की रस्म की जाती है, तो उसमें, वो अपना एक तजुर्बा सुना रही थी सिस्टर, कहने लगी कि कुंडों की रस्म होती है और उसमें कुछ सहेलियों ने मिलके कुछ पढ़ना होता है, आई डोंट नो क्या पढ़ना है। पाँच छह लोग जाते हैं, फिर बैठते हैं, फिर पढ़ते हैं, फिर रात के अंधेरे में कोई खीर पकती है, उसको खोलना नहीं होता, ऐन वक्त पे खोलते हैं, और उस महफिल में मर्द नहीं आ सकता। कहने लगी कि जब मैं गई तो मेरे साथ मेरा बच्चा था, छोटा सा बच्चा, को 1.5-2 साल का होगा, औरतों ने शोर मचा दिया। कहने लगी ना 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 ना, ये महफिल खराब हो जाएगी, इसकी बरकत चली जाएगी, ये बच्चा जो है को लेके छोड़ो। कहती खैर, मैंने बच्चे को किसी भी तरह कर करा के सुलाया, उसको कहने की जाओ इसको दूर किसी कमरे में सुलाओ, इस कमरे में नहीं रह सकता। कहती खैर, अल्लाह अल्लाह करके उसको सुला के वापस आई। एन देखिए, जब पढ़ पढ़ा के दुआ के वक्त पे तैयार हुए, बच्चा रोता हुआ वापस आ गया। मुझे बताइए फातूनी, अल्लाह ताला कहते हैं मुझे बताओ ये तुम्हें किसने कहा है? ऐसा दीन आज तुमने पेश किया, तुम सुनाओ। लियुदिल्लन्ना सभी गैर इल्म, बगैर इल्म के लोगों को तुम करते हो, तो याद रखियो कैसी चीजें, अल्लाह नहीं ऐसी बेतुकी बातों का हुक्म देता जो कुछ आज मुसलमानों ने अपने ऊपर रख दिया। यकीनन अल्लाह ऐसे जालिमों को राह रास्त नहीं देता। यहां भी नोट कीजिए कि फिर हिदायत नहीं मिलती। ऐसे लोग कहेंगे आप गुस्ताख हैं, आप ऐसी बातें करते। भैया आप इल्म ले लीजिए, आपको खुद सारी बातों का अंदाजा होगा। फिर उसके बाद नबी सल्लम के जरिए से अब बताया गया कि हराम है क्या? इतनी चीजें बता दी अरबों ने, ये हलाल वो हराम, ये जायज ये ना जायज, ये मर्द खाते ये औरतें नहीं। कहा इधर आओ, मैं तुम्हें बताता हूँ क्या हराम है क्या हलाल है। बड़ी प्यारी आयत है, कुल ला जिदु फी मा उही इलैया मुहर्रमन अला ताइम। ऐ नबी इनसे कहो जो वही मेरे पास आई है इसमें तो मैं कोई ऐसी चीज नहीं पाता जो किसी खाने वाले पर हराम हो, इल्ला ये के, यानी जो बातें तुम कह रहे हो मुझे तो नहीं ये नजर आई इस शरीयत में। मेरी शरीयत में तो बस ये चंद चीजें हराम है, और वो कौन सी हैं आइए देखिए। फिर वही चार चीजें ही आएंगी जो पीछे से चलती आ रही हैं। नंबर एक, मैता मुर्दार, या बहाया हुआ खून हो, या सुअर का गोश्त जो कि नापाक है। अच्छा, मैंने लव सुअर बोला तो मेरी जुबान तो नहीं नापाक हो गई? ये भी एक जुखरुफ अलकौली गुरूर है आज के दौर में, कहते हैं आपकी जुबान नापाक हो गई तो कुरान में आया तो मैं और आप क्यों ना बोल। खिंजीर, आप कहेंगे नहीं खिंजीर बोलना है। देखिए लफ्ज कुरान में खिंजीर क्या है, खा नून जा या रा, 50 नेकियां मिलती हैं लफ्ज खिंजीर कहने पे, क्योंकि कुरान का लफ्ज है, हर लफ्ज पे कम अज कम 10 नेकियां। कहेंगे बस रहने दो, अब ये बातें कर करके हमने कुरान पढ़ना ही छोड़ दिया। बेअदबी बड़ी होती है कुरान पढ़ने से, हम नहीं पढ़ते। अल्लाह ताला फरमाते हैं सुअर का गोश्त के वो नापाक है या फिस्क हो कि अल्लाह के सिवा किसी और के नाम पर ज़िबा किया गया हो, फिर जो शख्स मजबूरी की हालत में इनमें से कोई चीज़ खा ले बगैर इसके कि वो नाफरमानी का इरादा रखता हो और बगैर इसके कि वो हद ज़रूरत से तजावुज़ करे, तो यकीनन तुम्हारा रब दरगुजर से काम लेने वाला और रहम फरमाने वाला है। और जिन लोगों ने यहूदियत इख्तियार की इन पर हमने सब नाहुन वाले जानवर हराम कर दिए थे, और गाय और बकरी की चर्बी भी सिवाय इसके जो उनकी पीठ या उनकी आंतों से लगी हो या हड्डी से लगी रह जाए, ये हमने इनकी सरकशी की सजा इनको दी थी, और ये जो कुछ हम कह रहे हैं बिल्कुल सच कह रहे हैं, और अल्लाह को सच कहना ही आता है। और अब अगर ये तुम्हें झुठलाएं तो इनसे कह दो कि तुम्हारे रब का दामने रहमत वसी है और मुजरिमों से इसके अजाब को फेरा नहीं जा सकता। ये मुशरिक लोग तुम्हारी इन बातों के जवाब में जरूर कहेंगे, देखिए ये रस्सा कशी चल रही थी, टसल थी नबी सल्लम के साथ, या मैं चंद बातें कहूं तो इंशाल्लाह आपका जहन खुलेगा। 13 साल मक्का में नबी सल्लम रहे, आप सब जानते हैं ना कि मक्की दौर मुश्किलों का दौर था। नबी सल्लम 13 साल रहे, नमाज कोई नहीं है फर्ज, कोई नमाज नहीं थी 13 साल में, रोजा कोई भी नहीं है, सदका कुर्बानी शरीयत की कोई पाबंदी नहीं थी, जिसकी वजह से मक्का वाले आपको तंग करते हैं। सारे 13 साल में जो नबी सल्लम और सहाबा की नेकियां थी ना, और जिस पे मक्का वालों का रिएक्शन था, वो ये बातें थी, लिख ले। वक्त के साथ साथ जब सोसाइटीज में सुनी सुनाई बातें दीन का हिस्सा बन जाती है ना, तो जब अल्लाह किसी को दीन की बात के लिए वहां भेजता है तो उस मुआशरे का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या हो जाता है? कहते हैं ये हमारे तौर तरीकों पे तनकीद करते हैं, दादी अम्मा के वक्त से जो काम कर रहे थे अब क्या गलत है, वो मेरी सास मरहूमा जो काम करती थी क्या वो गलत था, और अब्बा जी के अब्बा जी के अब्बा जी फलां जो काम करते थे वो गलत था। 13 साल सिर्फ इस झगड़े में निकल गया, आज भी यही हाल है। कितने लोग हैं जो कुरान पढ़ने को तैयार है, कौन है जो कुरान नहीं पढ़ता? आज भी यकीन कीजिए, आज 5-5, 6-6 पारे एक दिन में पढ़ते होंगे अल्लाह के हुक्म से। प्यार भी है, मोहब्बत भी है, ख्वाहिश भी है, उसके लिए वक्त भी लगाते हैं, बट इस तरह कुरान पढ़ने से दूर किस वजह से रह जाते हैं कि फिर इसके बाद बहुत सारी चीज़ों पे तनकीद होती है। सिर्फ तर्जमा में पढ़ रही हूँ, अगर आप मेरे बाद में जाके दोबारा रिकॉर्डिंग से जुमले सुने, इस पूरे हिस्से में शायद 10% मैंने अपने पास से कुछ नहीं बोला, अल्लाह का कलाम और मैं तर्जमा कर रही हूँ। ये चीजें उस दौर में भी लोगों को चुभती थी। आप इमेजिन कीजिए कि नबी सल्लम मक्का में लोगों को कहते हैं, लोगों मेरे ऊपर सूरह अलक की चंद आयतें नाजिल हुई हैं, इकरा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक खलकल इंसान मिन अलक वगैरह, तुम इसको पढ़ लो तुम्हारी बेटियों के रिश्ते हो जाएंगे, तुम पढ़ लो तुम्हारे मियाँ को जॉब मिल जाएगी, आप इसका तावीज़ बना के घर में लगा ले तो चोर नहीं आएंगे। कौन था जो बुरा कहता आपको? खुश होते ना, बल्कि हो सकता है लोग तो वो पानी की बोतलें लेकर आ जाते कि आप जरा हमें भी दम कर दें। सारा झगड़ा 13 साल में इन बातों पे था कि हमारे तौर तरीकों पे, हमारे बाप दादा के तरीकों पे तनकीद क्यों है, हमारी खुशी गमी पे तनकीद क्यों है, हमारी दीनी रिचुअल्स पे तनकीद क्यों है, हमारे हज को अगर आप नंगे होके करते हैं बुरा क्यों कहते हो, हमारी नमाज तालियां और सीटियां क्यों नहीं है, तुम इस पर क्यों बुरा भला कहते हो? आज भी यही है। सच्चा दीन जब आएगा तो ये झगड़े होंगे, आपने बहस में नहीं पढ़ना, किसी से कोई बात ना करें, आप अपने लिए एक दुआ करें कि अल्लाह मुझे हिदायत के लिए चुन ले। और मैं अपने लिए कहती हूँ और आपको सिखाती हूँ, हमेशा हर जगह सिखाती हूँ अल्लाह के आगे गवाही देते हुए, ऐ अल्लाह मुझे ना तौफीक देना कि मैं आपको बहका दूँ, क्या मैं इतनी दूर से आपको बहकाने आई? ऐ अल्लाह मैं आप सबका बवाल नहीं सह सकती, मेरे इस हॉल में आता है ना बाहर से दुआ मांग के आया करें कि अल्लाह हम इनके भरोसे पर यहाँ कुरान सुनने आते हैं, ठीक है आपके कुरान सामने खुले हुए हैं, लेकिन अल्लाह इनकी कोई ऐसी बात जो कुरान सुनने से खिलाफ है वो हमें याद ही ना रहे, ये हमें तौफीक ही ना हमें मिले कि हम इनकी कोई बात याद करें, मेरे शर से पनाह मांग के आया करें कि मैं कहीं आपका अकीदा ना खराब कर दूं। क्योंकि कितने ही लोग हैं जो सही कुरान पढ़ने को अकीदे की खराबी कहते हैं, और ये पीछे से शैतान के वो ज़ुख़रुफ़ अल-क़ौली ग़ुरूरा, उसको पता है जितनी बड़ी चेंज किसी सोसाइटी में कुरान पढ़ने से आनी है उतना सिर्फ कुरान सुनने से कोई नहीं आती, सादे कुरान पढ़ने से चेंज नहीं आती, इस पर कोई तनकीद नहीं। आज भी देखिए लोग कितना कुरान पढ़ते हैं शैतान को और दुनिया में शर फैलाने वालों को, वो बुरे नहीं लगते, उनको कौन बुरे लगते हैं जो सच्चे दीन की बात करते हैं। तो अल्लाह सुबहान तआला फरमाते हैं इन मुशरिकों का जवाब सुनिए, अब ये सारा सिनेरियो जो बताया इसके जवाब में जरा ये अगली आयत सुनिएगा। सयकूलुल्लज़ीना अशरकू लौ शाअ अल्लाहु मा अशरकना, ये मुशरिक लोग तुम्हारी इन बातों के जवाब में जरूर कहेंगे कि अगर अल्लाह चाहता तो ना हम शिर्क करते ना हमारे बाप दादा, यानी इल्जाम अपने शिर्क का अल्लाह पे लगा रहे, और ना हम किसी को हराम ठहराते, ऐसी ही बातें बना बना कर इनसे पहले के लोगों ने भी हक को चुटलाया था, यहां तक कि आखिरकार हमारे अजाब का मजा उन्होंने चख लिया। इनसे कहो, दोबारा देखिए इल्म की बात है, इसको हाईलाइट करें, क्या तुम्हारे पास कोई इल्म है जिसे हमारे सामने पेश करो? बस ये जुमला आप याद कर लें, जब कभी कोई किसी दीन की बात करे आपके इसकी दलील दिखा दीजिए। तुम तो महज गुमान पर चल रहे हो और निरी क्या सराइयां करते हो, फिर कहो तुम्हारी इस हुज्जत के मुकाबले में हकीकत रस हुज्जत तो अल्लाह के पास है, बेशक अगर अल्लाह चाहता तो तुम सबको हिदायत दे देता। दुआ करते हैं अल्लाह हम सबको हिदायत दे दे। हम भटकने के लिए कुरान नहीं पढ़ रहे, हम अपने अकीदे खराब करने के लिए कुरान नहीं पढ़ रहे, ऐ अल्लाह हम सबको हिदायत पे जमा कर दे। और हिदायत के रास्ते की रुकावट ख्वाहिश, इसीलिए अगली आयत में देखिए वला तत्तबि अहवाल्लज़ीना कज़्ज़बू बिआयातिना, इनसे कहो लाओ अपने वो गवाह जो इस बात की शहादत दें कि अल्लाह ही ने इन चीज़ों को हराम किया है, फिर अगर वो शहादत दे दें तो तुम इनके साथ शहादत ना देना। देखिए कैसे क्रॉस क्वेश्चनिंग हो रही है कि मक्का वालों जाओ नबी कह रहा है कि मुझे इन बातों की दलील दे दो, और अगर वो कोई रेफरेंस दे भी देते हैं आप फिर भी ना मानना, क्योंकि इनके अपने तौर तरीके हैं जिसको ये अल्लाह के नाम पे कर रहे हैं। और हर किस इन लोगों की ख्वाहिशात के पीछे न चलना जिन्होंने हमारी आयात को झुठलाया और जो आखरत के मुनकर हैं और जो दूसरों को अपने रब का हमसर बनाते हैं। दोबारा नोट कर लें इस जुमले को, हम भी रब्बी हम यादिलून, कौन सी हमसरी है हुक्म के अंदर अल्लाह के किसी को शरीक करना। अल्लाह ताला हमें बचा के रखे। इसके बाद दीन का बड़ा खूबसूरत खुलासा अगली आयत में, कुल तआलु वत्लु मा हर्रम रब्बुकुम अलैकुम, यानी ये तुमने जो कुछ हलाल हराम को मैसअप किया हुआ है ना वो ठीक नहीं है, अब मैं तुम्हें बताता हूं कि दीन में क्या चीज हलाल है और क्या चीज हराम है। ए नबी इनसे कहो क्या हो मैं तुम्हें सुनाऊं तुम्हारे रब ने तुम पर क्या पाबंदियां आयद की हैं। नंबर एक ये कि इसके साथ किसी को शरीक ना करो। दीन की पहली ईंट शिर्क की बेखुनी है। और वालदैन के साथ नेक सलूक करो, वालदैन के साथ अच्छा सलूक करो। सूरत बनी इसराइल में इस पे कदरे तफसील से हम बात करेंगे इंशाअल्लाह ताला। और अपनी औलाद को मुफलसी के डर से कत्ल ना करो। औलाद का कत्ल क्या होता है, औलाद के साथ मामला बिगड़ता कब है कैसे होता है इसको समझिएगा। आप देखिए कि एक होता है औलाद को फिजिकली कत्ल करना जैसे कि लोग करते हैं, दूसरा तरीकेकार क्या होता है कि उनकी तरबियत ना करना, बच्चे पैदा करना लेकिन उनकी तरबियत से गाफिल रहना, ये चीज़ इंसान के लिए बहुत बड़े खतरे का पेश खेम है। आप देखिए कि बच्चों को जब हम दीन की समझ नहीं देते तो हम उनको स्पिरिचुअली हलाक कर देते हैं। खाना खिलाएं लेकिन उनकी रूह भूखी रहे तो वो बच्चे बेचारे भूखे रह गए। इसलिए इन आयतों को सामने रखते हुए साथ ही साथ हम अल्लाह से ये दुआ करेंगे कि मालिक तो हमें तौफीक दे इस बात की कि हम अपने बच्चों का सही हक अदा कर सकें, हम उनकी जिम्मेदारियों से अपने आप को आसान तरीके से पूरा कर सकें। फिर उसके बाद फरमाया नहनु नरज़ुकुकुम व इय्याहुम, हम तुमको भी रिस्क देते हैं और उनको भी रिस्क देते हैं। कैसे, यहां दूसरी वजह, तीन वजूहात थी औलाद के कत्ल की मक्का वालों में, लिख लीजिए। पहली आपको बता दी, अपने बुतों को खुश करने के लिए भेंट चढ़ाते थे। दूसरी वजह क्या थी, कहते थे कम बच्चे खुशहाल घराना, ज्यादा बच्चे होंगे तो खाएंगे कैसे। ये मालथिस की जो थेरी है वो उसी का कोई बाकी हिस्सा बचता हुआ लगता है। मुफलसी के डर से औलाद को कत्ल करते थे, ये चीज दुरुस्त नहीं। और तीसरा क्या था कि बेटियों को कत्ल कर देते थे, कि बेटी के नाम से उनको बहुत चिढ़ थी। उसका तस्करा पढ़ेंगे सूरत नाहल और सूरत ज़ुख़रफ में। अल्लाह ताला कहते हैं तुम खिलाते हो अपने बच्चों को, हम तुम्हें भी रिस्क देते हैं उनको भी देंगे। क्या पता चला कि सिर्फ इस खौफ से बच्चों को पैदा ना होने देना या एबॉर्शन करवा देना कि बच्चा पैदा हो गया तो हम अफोर्ड नहीं कर सकते, ये इंतहाई गैर इस्लामिक चीज है और इससे बहुत ज्यादा बचने की जरूरत है। फिर इसके बाद फरमाया और बेशर्मी की बातों के करीब ना जाओ, ख्वाह वो खुली हों या छुपी हों। अब ये कौन सी बातें हैं बेशर्मी की, इसमें बहुत लंबी तफसील आती। फवाहिश गाली देना फिस्क है, फुहश है। आप देखिए जिना, होमोसेक्सुअलिटी, लिवातत, फिर इसी तरह से गलत कपड़े पहनना, नंगा रहना, किसी पे झूठी तोहमत लगा देना, बाप की बीवी से निकाह कर देना, ये सब कुछ हदीस में फुहश में आता है। हदीस में आता है कि चोरी और शराब नोशी और भीख मांगना ये तक भी फवाहिश में आता है। इन सब से बचने का हुक्म दिया, हाँ वो खुली हो या छुपी हो। और किसी जान को जिसे अल्लाह ने मोहतरम करार दिया हो हलाक ना करो, यानी कत्ल ना करो, मगर हक के साथ। हक क्या है, तीन हक है। नंबर एक, जिसने कत्ल किया गवर्नमेंट हुकूमत उसको कत्ल करेगी। किसी को कत्ल कर दिया उसके बदले में, और दूसरी चीज आप समझिए कि शादीशुदा होने के बावजूद अगर कोई जिना करता है तो उसको रजम किया जाएगा, डेथ स्टोनिंग होगी। इसके ऊपर बात की गई कि इसको कत्ल किया जा सकता है, और तीसरा मुर्तद जो कि इस्लाम को छोड़ दे। लेकिन ये सब काम आप में नहीं करेंगे, इस्लाम कभी कानून को हाथ में लेने की इजाजत नहीं देता। जब इस्लामी निज़ाम नाफिज होगा, सारे कवानीन उस तरह बनेंगे, हालात वैसे होंगे, फिर इस्लामी सजाएं नाफिज होंगी। ये बातें हैं जिनकी हिदायत इसने तुम्हें की है, शायद कि तुम समझबूझ से काम लो, और ये कि माले यतीम के करीब ना जाओ मगर ऐसे तरीके से जो बेहतरीन हो, यहाँ तक कि वो सने रुश्त को पहुँच जाए, और नाप तोल में पूरा इंसाफ करो। हम हर शख्स पर जिम्मेदारी का इतना ही बोझ डालते हैं जितना उसके इम्कान में है, और जब बात कहो तो इंसाफ की कहो, ख्वाह मामला रिश्तेदारी ही का क्यों ना हो, और अल्लाह के अहद को पूरा करो। इन बातों की हिदायत अल्लाह ने तुम्हें की, शायद कि तुम नसीहत कबूल करो। नीज इसकी हिदायत ये है कि यही मेरा सीधा रास्ता है, बस तुम इसी पर चलो और दूसरे रास्तों पर न चलो, वरना क्या होगा, फतफर्रक बिकुम अन सबीली ही, वो तुम्हें इसके रास्ते से हटाकर दूसरी तरफ ले जाएंगी। जालिकुम वस्साकुम बिही लअल्लकुम तत्तकून, ये है वो हिदायत जो अल्लाह ने तुम्हें की, शायद कि तुम कजरवी से बचो। इस पूरी तवील आयत और इस मजमुआ आयत के बारे में हदीस में आता है कि अगर तुम में से कोई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वसीयत नामा सुनना चाहे तो इन आयतों को पढ़ ले। और अगर आपने ये बातें सिर्फ नोट भी की है ना, 15 से 20 के अंडर ये पॉइंट्स थे, पूरा दीन खूबसूरत फूलों का मजमुआ है। आप देखिए कोई एक चीज भी दीन इस्लाम में ऐसी नहीं है जिसको सुन के हम शर्मिंदा हो जाए, जिसको सुन के हम कहें हाँ ये नहीं होना चाहिए था। हमारी अकल, हमारी फितरत और शरीयत सब इन चीज़ों को जायज़ करार देती है। मतलब शिर्क को कोई नहीं पसंद करता। क्या हमारा दीन ये कहता है कि माँ बाप के साथ बदतमीजी करो? अगर ये होता तो हम शर्मिंदा होते हैं। तो खुले दिल से हम अपना दीन किसी गैर मुस्लिम को पेश कर सकते हैं, इसमें नथिंग टू हाइड, किसी से नहीं छुपा सकते। बस आप देखिए हम कुरान पढ़ रहे हैं ना इस वक्त, अब यहां तो हम सब बैठे हैं अपने जैसे, कोई गैर मुस्लिम आके बैठ जाए और हम परेशान हो जाए, हाय ये ना सुन के जाए हमारी बातें, हाय भाई सुने कुछ भी नहीं बुरा। हमारे दीन में कोई एक ऐसी बात नहीं जिसका डर हो हमें कि कोई सुन लेगा तो क्या होगा। अल्लाह फितनों से बचाए। मैं कहती हूँ जिसने सुनना है वो जरूर सुने, उसको हिदायत मिलेगी। नबी सल्लम के दौर में स्पाइस बन के, जासूस बनकर आपकी महफिलों में लोग आते थे और ये सोच के आते थे कि जरा फितने डालें और इधर से जरा से कुछ इशू उठाएं, इस्लाम कबूल कर लेते थे। मक्का वाला ने खुद एक शख्स को नॉमिनेट किया और कहा कि इस शख्स ने हमारे लिए मुश्किल की हुई है, हर दिन नई से नई बातें इसके जुबान पे आती हैं, जरा हमें तुम इसका इलाज तो करके दो। कहा ये बाबला हो गया। नौज़ बिल्लाह अल्लाह के नबी पे काहिन और मजनू होने का भी इल्जाम लगा कि ये हमारे हर तरीके को बुरा कहता है, इसको ये बाप दादा का कोई तरीका ही नहीं अच्छा लगता। एक हकीम साहब थे उनको बुला कर ले आए, कहा हकीम साहब इनका इलाज कीजिए। कहा ठीक है, दोनों को इकट्ठा कर दिया। वो जरा बुजुर्ग थे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी जवान थे और उस दौर में लोग चचा भतीजा कहते थे बड़े और छोटे को। आपको देखा का अच्छा भाई भतीजे सुनाओ भाई क्या कहते हो तुम, कोई मसला है, कोई इलाज करूं मैं तुम्हारा, कोई जिन आता है, कोई भूत है, कोई तुम पे कोई जादू टूना है तो मैं उस पे इलाज करूं, सुनाओ जरा तुम क्या कहते हो। कहा अच्छा, आपने अपनी मखसूस आवाज में नखमदहु व नस्तईनहु व नस्तगफिरहु व नूमिनु बिही का खुतबा शुरू कर दिया। जुबान थी नबी की, लफ्ज थे नपे तुले, अरबी जुबान थी, उस शख्स को समझ आ रही थी, इतना उसको सुरूर मिला, इतना मजा आया, कहने लगा भतीजे एक बार फिर तो ये कलाम सुना दो। आपने दोबारा सुना दिया। तीसरी बार फिर जब उसने सुना, इतनी देर में बाहर से लोग आ गए, सुनाओ भाई इसका इलाज किया। कहा क्या? कहा हां कर दिए। क्या? कहा अशहदु अन्न मुहम्मद रसूलुल्लाह, मैं गवाही देता हूं कि ये अल्लाह का रसूल है और बीमार ये नहीं है, तुम बीमार हो, तुम इसका सामना ना करो। याद रखिए इतना खूबसूरत दीन है हमारा, जो इलाज करने आता वो अपना इलाज करके चला जाता। कई ऐसे वाकयात हैं, नबी सल्लम के पास लोग आते, करीब से बैठते, कहते सुनाओ भाई क्या कहते हो। जब आप उनको बताते, अगर दिल में तासुब ना होता, पहले से कोई हिदायत गुमराही का मेयार ना कायम किया होता, मुसलमान होके चले जाते, तो पूरे शौक से गैर मुस्लिमों को सुनने दीजिए। बाज लोग कहते हैं ये होता है वो होता है, खुतबे रिकॉर्ड होते, मैं कहती हूँ इससे अच्छी और क्या बात है, किसी बहाने सुने तो सही। एक वक्त आया था अमेरिका में बहुत फितनों का, तो उस वक्त हर मस्जिद के बाहर पुलिस रखी जाती थी, नॉमिनेट की जाती थी कि खुतबों में क्या बातें होती हैं। बिलीव मी, उस दौर में इतने पुलिसमैन मुसलमान हुए, वो खुतबा सुनते थे। अगर इस्लाम के साथ सुनते तो उनको कितना अजर मिलता, और वो सुनते थे। हमारे पास खुद एक वहां मस्जिद थी, या अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह, तो उसके बाहर आते थे, तो जब वो बैठा होता था तो हम बाहर जाके उसको कोई कैन जूस का दे देना, कभी उसको कोई खाना दे देना, कभी बिरयानी देनी। मुझे लगता है वो मुसलमान हो चुका होगा। तो शुक्र कीजिए, सुने किसी बहाने तो सुने। हमारे कलाम में कुछ झोल नहीं है। हमारा रब इतनी सीधी बातें इंसानों की मोहब्बत की, उनकी हमदर्दी की करता है। इस दिन में कोई लूप होल नहीं है, कोई जंगी राज थोड़ी है, कोई राज खुल गया, कुछ हो गया। तो हमेशा दीन को उसकी असल पे रखें। मसला कब होता है? जब हम इसको ऊपर नीचे कर देते हैं। अल्लाह ताला हमारी इसलाह फरमाए।